ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानचिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददर्चि स्वपदाञ्चिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सग्रजतं सगुणाराधनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सवादुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सनालिता श्रीशकांवितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्तं नमस्तुते। ताप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवे प्रणमामि हरे प्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदान्त स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चादशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासजगौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत बाय सत्स्वरूप दास गोस्वामी चिन हरे कृष्ण एंड फाइट।
तो हालांकि प्रभु जी प्रवचन हिंदी में देंगे, लेकिन मैं शीला प्रभुपाद लीलामृत में से कुछ जो है पैसेज उसमें से पढ़ूंगा हिंदी में, और फिर प्रभु जी जो है बाकी उसके विश्लेषण करें। हरे कृष्णा गाय और संघर्ष करें, प्रकरण 51। शीला प्रभुपाद ने कहा, लोगों को ईर्ष्या हो सकती है कि ये भक्त शानदार इमारतों में रह रहे हैं, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना था कि केवल भक्त ही शानदार इमारतों में रह सकते हैं, केवल भक्त ही। ठीक जैसे सरकारी अधिकारियों को रहने के लिए सर्वोत्तम स्थल दिए जाते हैं, उसी तरह जो भक्त हैं उन्हें समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। अपव्यय ना हो, विलासिता ना हो, किंतु अच्छा भोजन, अच्छा आवास और अच्छी सुविधाएं उन्हें मिलनी ही चाहिए, और हरे कृष्ण कीर्तन में उन्हें निरंतर लगे रहना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है, ये नीरस नहीं है। विशेषकर अमेरिका से और यूरोप से आए हुए तुम लोग भारत के लोगों की तरह कठोर जीवन के अभ्यस्त नहीं हो। आप लोगों को सुविधा की कम से कम जरूरतों की आपूर्ति होनी चाहिए, ताकि आप कृष्ण की सेवा कर सकें। मैं यही करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वहाँ उपस्थित भक्तों को प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत के निमित्त कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया और अपना परिचित सूत्र दोहराया कि अमेरिकी दिमाग और अमेरिकी धन को भारतीय संस्कृति से मिलाकर पूरे विश्व को स्वर्ग में बदला जा सकता है। बाद में श्रील प्रभुपाद नई इमारत को देखने गए, जो पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी इमारत थी। जयपता गोस्वामी ने बताया कि ये 700 फुट से भी अधिक लंबी थी। श्रील प्रभुपाद बोले कि वह रेलगाड़ी की तरह लग रही है। उन्होंने एकाएक करके सभी कमरों का निरीक्षण किया और कहा कि उत्सव के पूर्व उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। बरामदे में टहलते हुए उन्होंने कहा, ओ ये तो फिफ्थ एवेन्यू की तरह। अगले कुछ दिन शांति से बीते। वह सैकड़ों गमलों में लगे पौधे के बीच छत पर सुबह देर तक बैठे रहते और मालिश कराते रहते। एक दिन कमरे के बाहर छज्जे की रेलिंग पर झुक कर उन्होंने नीचे के मैदान को देखा, जहां एक स्त्री भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। वह बोले, ये मंदिर है, यहाँ सदैव कुछ ना कुछ चलता रहता है। और अपने द्वारा तोड़े गए प्रत्येक फूल के साथ वह स्त्री अपने आध्यात्मिक जीवन में एक पग आगे बढ़ जाती। प्रभुपाद को ये बात विशेष रूप से पसंद थी कि मायापुर चंद्रोदय मंदिर का नित्य विस्तार हो रहा था और उसमें सुधार हो रहा था। उन्हें बरामदे से बाहर की ओर निहारना, अतिथियों का आना, भक्तियों का कार्यरत रहना तथा नई नई योजनाओं का रूप लेना देखना बहुत प्रिय था। किंतु प्रभुपाद का स्वास्थ्य की खराबी बनी रही। उनका कहना था कि ये पित्त और वायु का असंतुलन था। एक दिन जब उनके सेवक ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने उत्तर दिया, बहुत खराब। किंतु कभी कभी यही बहुत खराब सुबह के बाद वे शाम को बहुत अच्छे हो जाते थे। भक्तगण प्रभुपाद की बीमारी को भौतिक दृष्टि से नहीं देखते थे, किंतु उसकी चिंता तो उन्हें ही थी। वर्षों से वह स्वास्थ्य संकटों से कई बार गुजरे थे और भक्तगण जानते थे कि ये बीमारियां दिव्य थी, जिनका नियंत्रण सीधे कृष्ण के हाथ में था। 1977-78 में जब वह वृंदावन में गंभीर रूप से बीमार थे, 1974 में जब वह वृंदावन में गंभीर रूप से बीमार थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी बीमारी का कारण ये था कि उनके शिष्य कृष्णा भानामृत के विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे थे। उनके शिष्य जानते थे कि यदि वास्तव में उन्हें प्रभुपाद के स्वास्थ्य की चिंता है, तो उन्हें उनके आदेशों का कठोरता से पालन करना होगा। वह खतरों को मोल लेंगे, अधिक शिष्य बनाते रहेंगे, यात्राएं जारी रखेंगे, उपदेश करते रहेंगे, किंतु उनके शिष्य का कर्तव्य है कि ऐसे कार्यों से बचे जिनका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर। अधिकांश भक्तों का यही सोचना था कि प्रभुपाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे और वह स्वयं इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। वह कृष्णा भावनामृत आंदोलन के विस्तार में अत्यधिक तल्लीन थे। मायापुर पहुंचने के कुछ दिन बाद शिला प्रभुपाद अपने गुरु भाई भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज का आश्रम देखने कार और नाव द्वारा नवद्वीप गए, किंतु खड़ी दाल की पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते समय प्रभुपाद का एक पांव अचानक फिसल गया और वह लुढ़क पड़े। सौभाग्य से हरीश शौरी उनके बिल्कुल निकट था और उसने उन्हें संभाल लिया। 2 सप्ताह के भीतर प्रभुपाद अब दूसरी बार गिरे थे। दोनों ही बार वह सक्रिय रूप से धर्म उपदेश में लगे थे और दोनों ही बार जो कुछ हुआ था उसका उल्लेख किए बिना वे अपने मार्ग पर अग्रसर होते रहे। भुवनेश्वर में शिला प्रभुपाद ने स्वरूप दामोदर को वादा दिया था कि मायापुर उत्सव के बाद वे उनके साथ मणिपुर जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा कि वैदिक साहित्य में मणिपुर का उल्लेख था। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा मणिपुर राज्य की थी और इस पर कृष्ण चेतनामय क्षत्रियों का शासन था। अब शिला प्रभुपाद मणिपुर में जन्मे और पले स्वरूप दामोदर द्वारा प्रोत्साहित होकर मणिपुर जाने और वहां कृष्ण भावनामृत राज्यों को पुनः जागृत करने का प्रयत्न करने के लिए उत्सुक थे, किंतु गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उनके मन में प्रश्न उठा कि उन्हें मणिपुर की यात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं। हरीश शौरी को, जो प्रभुपाद के साथ 18 महीने से लगातार रह रहा था, अनुभव हो रहा था कि प्रभुपाद के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना नहीं थी और एक अर्थ में कृष्णा भावनामृत आंदोलन का विस्तार प्रभुपाद के निर्देशन में इतना व्यापक ढंग से हो रहा था कि कदाचित प्रभुपाद का इस तरह यात्रा करना आवश्यक नहीं रह गया था। कम से कम उनकी ऊर्जा और शक्ति व्यय के वैसे असामान्य व्यय के साथ नहीं जैसा कि वह पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे थे। अब उन्हें यात्रा में अवकाश ले लेना चाहिए। गत वर्ष ग्रीष्म में जब वह संयुक्त राज्य में यात्रा कर रहे थे, तब भी उन्होंने एक बार कहा था कि वह वहां केवल ये देखकर अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए जाना चाहते थे कि उनके शिष्य किस तरह स्वयं हर वस्तु की व्यवस्था करने में सक्षम हो गए। वह कहा करते थे कि कृष्णा भावना अमृत आंदोलन के भवन की उन्होंने नींव डाल दी है और इसका ढांचा खड़ा कर दिया है, अब उनके अनुयायियों को केवल उसे पूरा करना है। वह प्राय कहा करते थे कि उन्होंने भौतिकवादी समाज के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया है और अब इसका प्रभाव फैलेगा और वह अपना कार्य करेगा। वह ये भी कहते थे कि उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी है और वह समग्र विश्व में फैलेगी। अतएव यद्यपि वह अपने आंदोलन के लिए सदैव व्यग्र रहते थे, किंतु फिर भी उनमें आत्मविश्वास था। एक दिन प्रातःकाल नाश्ता करने के बाद प्रभुपाद अपने बरामदे में से मायापुर की भूमि को देख रहे थे। हरीशौरी की ओर मुड़कर वह बोले, यदि मैं इसी क्षण मर जाऊं तो वास्तव में कोई हानि नहीं होगी। मैंने हर काम के लिए नींव डाल दी है और यदि वे लोग मेरे द्वारा प्रवर्तित सारे कार्यक्रमों पर सही सही चलते रहें तो सब कुछ सफल होगा। ऐसा वक्तव्य सुनकर हरीशौरी विचलित हो गया और अवाक रह गया। तब प्रभुपाद ने फिर कहा, किंतु अभी भी मैं इस श्रीमद्भागवतम को पूरा करना चाहता हूँ।
हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपना हार्दिक धन्यवाद बोलना चाहता हूँ इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के लिए, क्योंकि उन्होंने हमको जबरदस्ती स्वागत किया। मैं पूरा कहानी बताऊँगा। जैसा मैं हर समय जब मैं दिल्ली आता था तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को मुलाकात होता था, लेकिन लास्ट कार्तिक जो है जब चंदी चौक रथ यात्रा के समय जो है रुक्मिणी कृष्ण प्रभु उनको वेद करके बोल रहे हैं, नहीं प्रभु अभी आपको अभी तुरंत आना पड़ेगा। फिर जब उन्होंने कहा जो मैं थोड़ा बिजी हूँ लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहूँगा और मैं आपको वचन दूंगा, मैं पक्का आपके पास आऊँगा। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपकी कृपा के द्वारा मैं इधर उपस्थित हूँ। हरे कृष्ण। और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं सेवा करने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम और जो भी ग्रंथ हैं हमारा ये भगवान दिए हैं सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं है जो किसी का अहंकार मतलब बनाने के लिए जो है, ये नहीं है। ये सेवा के लिए, इसलिए जो भी हम लोग मंदिर जो है इसी गेट में जो है हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो अपना अहंकार अपना उपाधि सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता उसी गेट की जो है बगल में रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग जीवेर स्वरूप हो कृष्ण और नीचे दास शिल प्रपात हम लोग देख सकते हैं, जो इस शिल प्रपात लीलामृत के द्वारा जो है हम लोग देख सकते हैं कैसे प्रभुपाद बहुत परिश्रम करके हैं, उनको बहुत कठिन जो है सेवा था। ऐसा पूरा इतिहास में जो है कभी नहीं हुआ जो पूरा विश्व में सनातन धर्म प्रचार चल रहा है, और विशेष करके जय श्री राधा रमन की कृष्ण बलराम भगवान की। ये पूरा इतिहास की चीज है। और एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा जो शिव व्यासदेव जी जब दूसरा एडिशन भगवत श्रीमद भागवत की होगा तो उन्होंने नया नया जो अध्याय है चैप्टर लिखेंगे जो ये लीला प्रभुपाद जी की लीला के बारे में। इसलिए जो हम लोग अभी कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ये केवल इतिहास की चीज़ है, अगर अच्छा प्रचार करेंगे तो आपका नाम भी श्रीमद भागवतम आ जाएगा. क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब विदेश में चला गया, उनका एक इच्छा था. 25,000 सरस्वती उनका गुरु जी एक उपदेश दिया उनको, केवल एक, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो बस अपना किताब वितरण करो, बस इतना है. कभी कभी हम लोग भी गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हमको कुछ विशेष आशीर्वाद दीजिए, लेकिन गुरु जी देख रहे हैं हम लोग कौन है. हम लोग नहीं देख पाएंगे हम लोग कौन है, लेकिन गुरु जी सब कुछ देख रहे हैं. इसीलिए कभी कभी एकदम सादा एकदम सिंपल उपदेश देते हैं, किताब वितरण करो. हम लोग सोचते हैं अरे क्या बात, सब लोग कर रहे हैं, हमको भी ऐसा उपदेश दिया है. नहीं, श्रील प्रभुपाद के ऐसा सोच नहीं था. उन्होंने बारंबार भक्तिसिंह सरस्वती को अप्रोच किया और बारंबार एक ही प्रश्न पूछ रहा था, गुरु जी क्या सेवा है. तो बारंबार भक्तिसिंह सरस्वती एक ही उपदेश दिए, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप अंग्रेजी भी आपको आता है तो अंग्रेज देश में पश्चिम देश में प्रचार करो. बारंबार एक ही उपदेश था. तो श्रील प्रभुपाद पूरा जीवन संकल्प लिया है, जैसे हम लोग बोले हैं करेगा न तो मरेगा. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के भावना ऐसा था, मैं निश्चित रूप में अपने गुरु का आज्ञा पालन करूंगा. तो पूरा जीवन उन्होंने तैयार किया, क्योंकि उस समय उन्होंने गृहस्थ था. हाँ, पूरा मतलब 24 घंटा भगवान की सेवा नहीं दे सकता. आप लोग जानते हैं यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सब गृहस्थी लोग हैं, तो गृहस्थ जीवन में कितना कठिन है, विशेष करके कलयुग में. कलयुग में जो है अपना परिवार को मेंटेनेंस करना वो भी बहुत बड़ा सेवा लोग समझते हैं. हाँ, कलयुग में जो है सब गिर गए, सारी चीज़ जो है सारे नियम पालन करना बहुत मुश्किल है. हम लोग सोचते हैं हम लोग चार नाम पालन कर रहे हैं तो बहुत बहुत बड़ा भक्त बन गया. नहीं, श्रील प्रभुपाद कई बार ने कहा जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, मतलब मनुष्य का लेवल इतना है, जब आप चार नियम पालन कर रहे हैं तो आप मनुष्य बन गया. नहीं तो दो फिर की जो है पशु है. तो आप सोच लीजिए ये शास्त्र के अनुसार, आप सोच लीजिए आजकल क्या है. तो श्रील प्रभुपाद आज के हम लोग थोड़ा सा मायपुर 7 फरवरी 1977 जो ये अंतिम साल था जो श्रील प्रभुपाद इस पृथ्वी में था. और वास्तव में जो है श्रील प्रभुपाद अभी तक है यहाँ पर, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते हैं. जैसा इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं प्रकात अप्रकात. तो अभी जैसे भगवान श्री कृष्ण का लीला कभी कभी प्रकात हो जाता है. जैसे 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ ब्रज भूमि शिव वृंदावन में अपना लीला प्रकात किया, लेकिन उनका लीला अभी तक चल रहा है, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते हैं इस आग में, लेकिन चलते रहते हैं. कुछ ब्रजवासी लोग भी बोल रहे हैं देखो आज हिंदुवान और सेवा कुंज में भगवान श्री कृष्ण रोज आता है रसा लीला करने के लिए. कुछ लोग जैसे सीधी लोग जो बहुत बड़ा शुद्ध भक्त हैं जो देख सकते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति देख नहीं पाए. तो श्रील प्रभुपाद भी अपना लीला अप्रकट किया, अभी तक चल रहा है, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते. अगर हम लोग के पास जब आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होगा कैसे होगा उसको शास्त्र चक्षुष. तो श्रील प्रभुपाद जी की वाणी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं अभी तक. जैसा करोना, तो करोना जो है सबसे पहले अपने खुद को करना पड़ेगा। कैसे? बहुत अच्छा साधना करना चाहिए और इस संसार से जो है कम से कम थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। कैसे? अपना भवन के, इसलिए श्रील प्रभुपाद नाम दिए हैं अपना संस्था की कृष्ण भावनामृत, क्योंकि सारे संस्था की उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। नित्य सीधा कृष्ण प्रेम श्रवण जी सुदीक्षित कोरी उदय, केवल श्रवण करने से जो है हमारा कृष्ण भावनामृत उदय भूल गया, इसी प्रकार में हमारा कृष्ण भावनामृत जो हर समय हम लोग कृष्ण प्रेम जो है श्रवण करना चाहिए। और ये वास्तव में जो है ये बहुत साइकोलॉजिकल, जैसा आप देख सकते ये किया सरकार लोग, ये किया कांग्रेस पार्टी, ये वो बस आपस में, अगर तो नहीं देखता हूँ लेकिन तो बहुत अच्छा अनुभव मिल गया। इतना कोशिश किया भगवान के बारे में कुछ प्रचार करना, हाँ वो तो ठीक है लेकिन सरकार जो है देखो ये राजनीति के बारे में लोग सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं और फिर इस विषय के बारे में जो है लोग सोचते हैं, इसीलिए इसी चक्र में जो है लोग फंस जाते हैं। लेकिन भक्त लोग जो है कम से कम कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन है इस एटमॉस्फेयर में, इस माहौल में जो है बड़ों का सेवा करना, जब चारे तरफ से सब लोग आपको बोलेंगे अरे क्या कर रहा हूँ भाई, ये तो आजकल ये फैशन नहीं है ये सब पुराना मामला है ठीक है नहीं। लेकिन भक्त का कर्तव्य जैसे शिव प्रभुपाद, हम लोग तो आजकल देखो कितना हमको आश्चर्य हो गया प्रभु सच, यहाँ मंगलवती के समय जो है प्रवेश करना बहुत मुश्किल था। मैं तो सोच रहा है चलो ठीक है, तो चार पांच लोग जो है जैसा इसको मंदिर में है, काफी मंदिर में आप देख सकते हैं चार पांच लोग जो है आ जाता है, लेकिन प्रसाद के समय सब लोग आ जाते हैं लेकिन कम से कम इधर जो है इस मंदिर में जो है मुझको आश्चर्य हो गया, जैसे कार्तिक महीना के समय हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो उस समय इतना भीड़ है, इतना भीड़ आप प्रभु जी के जो समाधि से आप दूर से जो है आप दर्शन कर सकते हैं। आज मेरा भी ऐसा हो गया, यहाँ से दर्शन किया मैंने बहुत बढ़िया हमको सच बता रहा, मैं मेरा बहुत अच्छा लगा है, मेरा उत्साह इतना बढ़ गया, तो मैं सोचा चलो ठीक है इस मंदिर में जो है कुछ ज्यादा समय रुकना चाहिए क्योंकि आप लोगों का जो है सत्संग मिल गया तो मेरा भी भक्ति बढ़ जाएगा पक्का ऐसा बात नहीं है जो कोई मैं इधर इस कुर्सी में बैठ करके सोच बड़ा भक्त बन गया, नहीं है, मैं यहाँ इधर साधु संग करने के लिए आया हूँ। और कितना मैं बार सुना बहुत अच्छा मंदिर है, गोपाल कृष्ण महाराज उनको भी बोल रहे हैं बहुत सुंदर मंदिर जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों आए नहीं है। लेकिन अभी इस समय आप लोगों का रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का सत्संग मिलने के लिए मुझको तो आना पड़ता है इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और वास्तव में जो है श्रील प्रभुपाद जी का लीला असीमित है, मतलब उसके सीमा है नहीं, हम लोग कितना समय है इतना हम लोग चर्चा कर सकते हैं। फिर भी मैं इसलिए यहाँ समय तो लगाया ना 9 बजे तक, कितने बजे? अच्छा चलिए। तो श्रील प्रभुपाद उन्होंने अपना सारी शक्ति अपने किताब में रख दिए और सारे शिष्य को उपदेश दिया, मेरा किताब वितरण करो। इसी प्रचार की जो ये अलग प्रकार की तरीका है प्रचार करने के लिए, वास्तव में जो है केवल किताब वितरण करना इतना मतलब इतना नहीं पड़ेगा, उसके बाद जो है किस हाथ में हम लोग किताब दिए हैं, फिर उनका एड्रेस लेना पड़ेगा, उसको फॉलोअप आप करना, कंटेक्ट करना। आजकल हमारा स्कूल की जो है सबसे कमजोरी ये है रास्ता है, क्योंकि हम लोग बहुत किताब वितरण किए हैं। आजकल दिल्ली जो है नंबर वन चल रहा है पूरे विश्व में, कई साल से हम लोग कितना किताब वितरण किया आपको मालूम है? कितना है? सारे मतलब दिल्ली में मालूम नहीं है बहुत है। आजकल मैंने देखा 80% सारे विश्व की जो किताब भारत में होता है 80%, लेकिन लोग पढ़ते हैं नहीं, आपको मालूम है? नहीं। मैं एक बार इलाहाबाद में था तो हम लोग बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है वहाँ पे राजकारण पैलेस, उसका मालिक जो है हमारा सदस्य है, जीवन की सदस्य है, और कई बार हम लोग प्रोग्राम करवाए, उन्होंने भगवद्गीत की स्पॉन्सर किया और बहुत पब्लिक आ गए, किताब वितरण कर चुके हैं बहुत। लेकिन एक साल में हम लोग आए उनके ऑफिस में, वो बोले सुनो आप तो क्या किताब भगवद्गीता पढ़ते हैं? अरे कहाँ समय हो गया, मेरे पास तो है। उनके पास कितना हम लोग वितरण किया हो, हर समय उन्होंने नया नया कॉपी रखा हो, तो 7-8 भगवद्गीता उनकी उनके ऑफिस में थे। तो उन्होंने एक भगवद्गीता ऊपर से जो लिया पूरा धूल आ गया उसे, मेरे पास है देखो भाई। ऐसा ठीक है, भारत में जो है भगवद्गीता सभी लोग के पास है लेकिन पढ़ते नहीं। जैसा मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है लेकिन आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव मतलब फ्रीज हो गया। जैसा मेरा कुछ दिन पहले जो है, क्योंकि मैं तो विदेशी हूँ, अपना अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको फिर दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और बहुत लंबे जो है, लेकिन पैसा निकल नहीं सकते। तो मैं ऑफिस को बोले अरे भाई साहब मुझे तो कुछ पैसे तो निकलना चाहिए, तो अरे भाई ये अभी वेरिफिकेशन चल रहा है अभी रुक जाओ। तो इसी प्रकार में जो है भारत में सभी लोग के पास भगवद्गीता है लेकिन उसके एक्सेस है नहीं, फ्रीज हो गया, भगवद्गीता खुलते नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम भगवद्गीता में 700 श्लोक हैं, अगर दिन में 2 श्लोक पढ़ेंगे 5 मिनट लग जाएंगे, है कि नहीं? 2 श्लोक पढ़ने में कितना समय लगता है? इतना ही साल में कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं मायापुर में था, वैशेषिक प्रभु बहुत अच्छा ऐप दिखाई दिया है, उसमें अगर आप संकल्प लेंगे कोई भगवद्गीता श्रीमद भागवतम सीतायन शरतम कोई भी प्रभु जी का पुस्तक पढ़ने के लिए, उसमें दिखाई दे रहा है ठीक है मैं 1 महीना में पूरा भगवद्गीता पढ़ना चाहता हूँ, आपको तुरंत दिखाई देंगे कितना आपको पेज प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। और फिर उसमें रिमाइंडर भी है, जैसे मान लीजिए आज आप जो अपना संकल्प किया नहीं है तो आपको रिमाइंडर आवाज देगा उसको किताब पढ़ो। बहुत अच्छा है, उसके पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा होना चाहिए जो आपको रात को 1 बजे जो है कोई उठेंगे और पूछेंगे आपको श्रीमद भागवतम सारे श्रीमद भागवतम कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेंगे, तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा मेरे पास इतना बाकी है, इतना पेज इतना स्कंदा इतना अध्याय जो है बाकी है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये किताब लिखती है हम लोग के लिए, कभी कभी हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है दूसरे लोग के लिए वो बस उनको विदर्भ करने के लिए। नहीं, अपना शिष्य के लिए। और इसीलिए आजकल आप देख सकते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं आजकल कितना है। श्रील प्रभुपाद कम से कम लगभग 5,000 शिष्य मतलब दीक्षा दिए हैं, लेकिन हमारा मूवमेंट में बहुत कम लोग हैं। ऐसा क्यों? कभी आप लोग ऐसा प्रश्न पूछा है? नहीं, क्योंकि गुरु के सम्मान करना दो प्रकार की जो रास्ता है, वाणी और वापु। वापु मतलब जैसे हम लोग फिजिकली गुरु को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कोई फिजिकल जो सेवा कर सकते हैं, लेकिन वाणी, उनका वाणी जो उनको उपदेश आज्ञा पालन करना। तो इसी प्रकार में जो है श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य लोग जो हैं और उनके फॉलोअर्स जो हैं काफ़ी आ जाते हैं और काफ़ी चला जाता है। ये एक ही समय से क्या क्योंकि हम लोग इतना प्रभुपाद जी को वाणी लेते नहीं, जो लेता है तो अभी तक जीवित है, अभी तक भक्ति कर रहे हैं, जो लेते नहीं है वो चला गया। माया बहुत खतरनाक है, बहुत उसको पार करना बहुत मुश्किल है। दैवी है शगुन मई मम माया द्रोचया मम वही प्रपंचते माया मितम तरन चिते। माया को जो पार करना केवल एक ही उपाय है, भगवान के शरण में समर्पण करना। लेकिन कैसे समर्पण करना? एक ही उपाय है, सबसे पहले गुरु का जो सुनना चाहिए, गुरु का वाणी जो है सुनना चाहिए। बिना श्रवण जो है कीर्तन होगा नहीं, कभी नहीं होगा। कभी कभी लोग उनको पूछते हैं आप विदेशी हैं, आप कैसे हिंदी सीख गए? क्योंकि इतना ज़्यादा लोग तो है नहीं जो हिंदी बोलने वाला जो विदेशी। तो मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, जो मैं जब इलाहाबाद में था वहाँ पे तो आप लोग जानते हैं इंग्लिश भी चलता है नहीं और रशियन भाषा तो छोड़ दीजिए वैसे तो उस समय जो है जब मैं गुरु का आज्ञा था इलाहाबाद में जाओ वहाँ पे प्रचार करो, तो जब मैं आ गया पत्रपुर भी नहीं था, कहीं घूम रहे थे प्रचार करता था तो मैं अकेले था, क्या करना, बस उसकी कुछ सेवा तो करना चाहिए। तो हमारा जो मंदिर के जो अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट हमको किताब दिए हैं, बोले जाओ प्रचार करो कैसे प्रचार करना मुझे पता नहीं, कोई तो मेरा भाषा भी नहीं समझते हैं, अंग्रेजी भी इतना नहीं समझते हैं। उस समय तो 20 साल हो गया, 20 साल पहले था, तो मैं छोटा सा कागज में लिख दिया क्या बोला, ये अच्छा किताब है अपना भाषा में और जो भी है कुछ ये किताब ले लीजिए, इतना दाम है, बस इतना। और जब निकल गया तो इतना याद नहीं था, ये कागज देकर फिर बोलता था और धीरे धीरे प्रतिदिन तो एक ही मंत्र बोलना पड़ेगा, ये किताब ये अच्छा किताब है, तो कम से कम 50-100 बार तो बोलना पड़ेगा तो धीरे धीरे सीख गया। तो मैं सोचा चलो ठीक है, अभी तो कुछ बढ़ाना और कोई सेंटेंस जो है सीखना पड़ेगा। और धीरे धीरे 1-2 महीना के बाद केवल हिंदी में श्रवण किया और उसके बाद हिंदी कीर्तन चालू हो गया अभी तक चल रहा है ये तरीका है कैसे हम लोग कृष्ण भावनामृत में आ सकते हैं। केवल कृष्ण के बारे में जो है सुनना चाहिए और धीरे धीरे कृष्ण के बारे में हम लोग कीर्तन करेंगे। यही तरीका है और कुछ दूसरा उपाय है नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत कोशिश किया कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद मणिपुर में आ गए, ये तो मणिपुर का जो है कहानी है। तो उनके शिष्य लोग सब विदेशी था उस समय, सब अमेरिका से हैं, यूरोप से। तो श्रील प्रभुपाद एक बार ने कहा देखो हम लोग मणिपुर में आ गए और कुछ नहीं करना, सिर्फ जाप करना, कीर्तन और जाप करना। लेकिन उनके शिष्य लोग थोड़ा सब युवक था, बहुत शक्ति, बहुत रजोगुणी थे। तो एक शिष्य पूछा, श्रील प्रभुपाद, व्हाट वी गोइंग टू डू हियर, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? उस समय तो मायापुर में कुछ नहीं था, बस खेत, चावल की जो खेत था। तो आश्चर्य हो गए, हम लोग क्या करना? क्योंकि जब विशेष करके विदेशी लोग जो हैं बहुत रजोगुणी हैं, उनको कहीं कुछ करना, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम लोग अमेरिकन हो, तुमको कुछ करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपना समय में, जब प्रभुपाद जी था यहाँ पर, उन्होंने बहुत प्रचार किया, क्योंकि अपना विदेशी लोगों को जो है इंगेज करना, उन्होंने एक एक सन्यासी को जो है चाइना में भेजा, दूसरे को जो है अफ्रीका में भेजा, क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति था और कुछ करना चाहिए। इसलिए आजकल कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तमोगुणी और रजगुण में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ सत्वगुणी भी हैं लेकिन बहुत कम है। इसलिए अपना रजगुण जो है इंगेज करने के लिए उसमें बहुत सेवा करना पड़ेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद हैदराबाद में मॉर्निंग वॉक में ने कहा, देखो हमारा एक ही काम है, जप करना, लेकिन हमारा शिष्य लोग जो है ये नहीं कर सकते, इसलिए उनको आई हैव टू स्ट्रेच माई माइंड, उनको दिमाग जो है पूरा लगाना पड़ेगा, कैसे अपना शिष्य को इंगेज करना, कैसे सेवा में लगाना। ये समस्या है, क्योंकि जैसा छह गोस्वामी लोग जो हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी 22 घंटा, 24 घंटा में 22 घंटा जाप करता था। कोई कर सकता है ऐसा? नहीं, कोशिश कर सकते हैं ऐसा बात नहीं, लेकिन कितना दिन तक? एक दो दिन फिर बोलते हैं, अरे चलो ठीक है, अभी तो नहीं लगा। लेकिन दो घंटा रघुनाथ दास गोस्वामी सोना खाना और किताब लिखना दो घंटा में दिया है, 22 घंटा जाप करता था। इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रचार करना चाहिए, कोई सेवा करना चाहिए, क्योंकि उसी में हम लोग पूरा उसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए प्रभु जी का वाणी सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा आप लोग तो किताब पढ़ते रहते हैं, कहीं पूरा श्रील प्रभुपाद जी किताब में हमारा शिक्षा परंपरा है नहीं, जो भगवद गीता में दिया है वो शिक्षा परंपरा है। क्यों, मेरा प्रश्न है, क्यों क्यों श्रील प्रभुपाद शिक्षा परंपरा दिए हैं नहीं? क्योंकि इतना विशेष नहीं है, है विशेष शिक्षा जो है ये बहुत विशेष है, लेकिन शिक्षा से शिक्षा कहीं गुण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षा लिए हैं, ठीक है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी की बहुत शिष्य लोग शिक्षा लिए हैं, लेकिन सब लोग अभी तक है नहीं, कुछ लोग माया में गिर गए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को शिक्षा लिया नहीं है। समझे मेरे बात? जो शिक्षा लेना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग श्रील प्रभुपाद जी को वाणी लेते रहते हैं, हम लोग सिक्योर, हम लोग एकदम रक्षित हैं, हमें कुछ होगा नहीं है। लेकिन जब वाणी चला गया, मैं अपना अनुभव बताऊंगा, मैं ऐसा संकल्प लिया है, जब मैं श्रील प्रभुपाद जी का पूरा प्रवचन नहीं सुनूंगा, तब किसी का दूसरा प्रवचन नहीं सुना, ऐसा संकल्प मिल लिया। मैं प्रतिदिन कम से कम एक दो घंटा प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनता हूँ, और आजकल बहुत प्रकार की माया दानव की कृपा से हम लोग बहुत प्रकार की डिवाइस हैं, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, मोबाइल, स्मार्टफोन, जो भी है उसको भी भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। कैसे? बस केवल प्रभुपाद जी का वाणी सुनना चाहिए और भगवान का श्रवण कीर्तन सुनना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज, एक इंद्रिय हम लोग भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे तो फिर अपने आप माया में लग जाएंगे, है कि नहीं? अपने आप यहां संसार में जो है भगवान का सेवा करने के लिए बहुत कोशिश करना चाहिए, लेकिन माया सेवा जो है अपने आप हो जाता है, है कि नहीं? अपने आप यहां मंदिर से निकल जाए बस उधर माया पूरा, यहां इतना नहीं है। यहां तो भक्त लोग जो है कीर्तन करते हैं, कोई नया आदमी आ गया है तो उनको तुरंत कीर्तन करना चाहिए, बस सेवा में लग जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत कोशिश किया मायापुर बनाने, जैसा आज के अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद मायापुर फेस्टिवल चालू किया, अभी मायापुर में जो है मायापुर का फेस्टिवल चल रहा है, काफी लोग दिल्ली से जाते हैं परिक्रमा के बाद फिर वापस आ जाते हैं, कभी कभी साल में कम से कम एक बार मायापुर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत विशेष धाम है विष्णु धाम, और उसको नाम भी है करुणा, करुणा धाम, उसमें भगवान विशेष दया दे रहा है, क्योंकि दूसरे युग में जब भगवान का अवतार आता था तो भगवान परित्रणाय साधुनां विनाशय च दुष्कृतम्, धर्मा संस्थापन भयम स्वभाव में युगे युगे, हर युग में भगवान आ जाता है, लेकिन उनके तीन काम है, परित्रणाय साधुनां विनाशय च दुष्कृतम् धर्मा संस्थापन, तीन काम करने के लिए, अपने भक्तों को रक्षा करना और फिर विनाश है, नाश कर रहे किसको, जो असुर को दुष्कृतम, और धर्म स्थापन भी कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी आज से हम लोग शाम को जो है चैतन्य लीला जो है गौर लीला जो है चर्चा करेंगे, तो महाप्रभु भी तीन काम करने के लिए जो है आ गए, अपने भक्तों को जो है रक्षा करने के लिए, और असुर को तो मरा नहीं फिर भी असुरम भावम आश्रितम, असुर का भावना जो है जो हमारा मतलब कॉन्शियसनेस जो 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 असुर का भावना है उसको मरने के लिए आ गए, क्योंकि कलयुग में जो है सब लोग आधा असुर आधा देव है। जैसा सत्ययुग युग में असुर और देव अलग लोक में था, अलग अलग प्लेनेट में था, तो द्वापर युग में एक ही लोक में था, जैसा रावण श्रीलंका में था और रामचंद्र भारत में था, लेकिन ये त्रेता युग में एक ही परिवार में आ गए, द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए जैसा पांडव और कौरव, लेकिन कलयुग में जो है एक ही शरीर में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये असुर को जो भीतर है उसको मरने के लिए आ गए, कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, ये कलयुग में जो है भगवान विशेष रूप ले रहे हैं नाम अवतार, और कितना हम लोग अच्छी तरह से अगर जाप कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो है हमारा असुर का भावना नाश हो जाता है, और हम लोग खुद देख सकते हैं जब हम लोग के पास ईर्ष्या निकल जाता है, जैसे शुरू में श्रील प्रभुपाद ने कहा काफी लोग ईर्ष्या के कारण से भक्त को निंदा कर रहे हैं, कैसे निंदा कर रहे हैं, अरे इतना सुंदर मंदिर बना रहे हैं, इतना गाड़ी जो है चला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार ऑस्ट्रेलिया में भक्त लोग बहुत कोशिश किया श्रील प्रभुपाद अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए, तो एयरपोर्ट में जो है लोग रोल्स रॉयस यहाँ तो भारत में है नहीं देखा, रोल्स रॉयस जो है वो सबसे ज्यादा उसके मगा है गाड़ी है, कितना करोड़ डॉलर जो है पता नहीं, लेकिन बहुत मगा है, तो भक्त लोग रोल्स रॉयस लेकर शिल प्रोपा जी की जो एयरपोर्ट में आ गए तो रोल्स रॉयस में आ गए, तो सारे न्यूज़पेपर पत्रिका लाया जो है सब लोग फोटो खींच करके न्यूज़पेपर में डाल दिया, देखो किस प्रकार की साधु जो है रोल्स रॉयस में घूम रहा है। तो शिल प्रोपा ने कहा अरे ये क्या रोल्स रॉयस, ये केवल जो है लोहा का जो बॉक्स है कुछ नहीं है। वास्तव में जो है भक्त जो है ये भगवान की प्रतिनिधि है, तो भगवान को प्रतिनिधि जो है पूरा सोना मोती की जो है गाड़ी जो है स्वागत करना चाहिए, उसको गिफ्ट देना पड़ेगा, केवल जो लोहा लोहे के जो है सामान गाड़ी आ गए ये क्या है। इसलिए शिल प्रपात वास्तव में जो है क्रांति करने के लिए आ गए, क्रांति रेवोल्यूशन, लेकिन बाहर का क्रांति नहीं है, भीतर का क्रांति, हर हृदय में जो है क्रांति। कभी कभी लोग सोचते हैं जैसा मेरे देश में तो बहुत प्रकार की क्रांति था। इतना परेशानी आदमी को मिला है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, जो था और क्रांति के बाद कुछ 100 साल 150 साल के बाद फिर वापस आ गए, जो कम्युनिस्ट का क्रांति था, लेकिन धीरे धीरे फिर कैपिटलिज्म आ गए, क्योंकि भीतर का जो है क्रांति हुआ नहीं। इसलिए जब हम लोग किसी को प्रति जो है उंगली लगाता है तो तीन उंगली कहाँ देख रहे हैं, अपनी तरफ से है कि नहीं, कभी कभी लोग ऐसा ऐसा बोलते फिर भी सबसे पहले जो है अपना खुद देखना पड़ेगा, तब हम लोग जब अपना सेल्फ रियलाइजेशन, एक किताब है आत्मा साक्षात्कार विज्ञान, उसके अंग्रेजी के नाम साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरे का रियलाइजेशन नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन, आपने को खुद ठीक करना पड़ेगा तब आगे बढ़ना। क्योंकि काफी लोग जो है शुरू से जब इस्कॉन नया था काफी लोग प्रचार किया, लेकिन आपने खुद को प्रचार किया नहीं। आज के क्लास के बाद जो है आप लोग अगर कुछ याद नहीं करेंगे तो कम से कम एक सूत्र याद कीजिए, फोकस ऑन शिल प्रपात वाणी, शिल प्रपात जी को वाणी पूरा फोकस करना चाहिए, ये कम से कम ये लाइन जो है आप लोग याद कीजिए, अगर याद नहीं करेंगे तो मेरा सेवा तो फालतू हो गया। तो ये कम से कम ये सूत्र जो है आप लोग याद कीजिए, क्योंकि शिल प्रपात हम लोगों को सब कुछ दिया है। जैसा शिल प्रपात जी के और एक बहुत शुद्ध भक्त था शिल गौर गोविंद स्वामी महाराज, तो ये बहुत महाभागवत परमहंस था, हम लोग अभी जानते हैं महाभागवत, तो उनके पूरे जीवन की तीन मिशन था, तीन उद्देश्य था, भुवनेश्वर में मंदिर स्थापित करना और सारी किताब ओडिया भाषा में अनुवाद करना, क्योंकि उन्होंने ओडिशा के रहने वाले थे, और तीसरा उद्देश्य सबको पूरा विश्व में प्रचार करना जो शिल प्रपात जी किताब में सब कुछ है। और शिल प्रपात भी ने कहा जो भगवद गीता जो है ये बैचलर डिग्री, भगवद गीता उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु श्री शपनिषाद जो है उसको भक्ति शास्त्र के लेवल में जो सीखना पड़ेगा, ये उसका क्या बोला नहीं ये प्राइमर एजुकेशन, फिर श्रीमद भागवतम जो है पल्ला स्कंदा भक्ति वैभावा ये बैचलर, दूसरा छह स्कंदा जो है भक्ति वेदांता लेवल जो है मास्टर डिग्री, और चैतन्य चरितामृत जो है पीएचडी। तो आज हम लोग चैतन्य चरितामृत शाम को पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है आप लोग मास्टर डिग्री पढ़ चुके हैं आध्यात्मिक, ठीक है। फिर भी चैतन्य चरितामृत में सब कुछ है, अगर आप जब प्रभु जी हमको बता दिए हैं चैतन्य चरितामृत ये कथा करना तो मैं तुरंत उसको खुल गया और बहुत पेश करना लगा है। फिर भी चैतन्य चरितामृत में जो है कैसे प्रचार करना, अलग प्रकार के आदमी को जो है कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, सब कुछ है। आज शाम को हम लोग इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा कहने का क्या है, जो शिल प्रभुपाद अपना पूरा जीवन लगा दिया और एक ही चीज के लिए, श्रीमद भागवतम और अपना पुस्तक अनुवाद करने के लिए। जैसे शिल प्रभुपाद अंतिम में ने कहा आज के पैराग्राफ में, जो अगर मैं, क्योंकि शिल प्रभुपाद बहुत बीमारी थे, बहुत बीमार, उनके घूमने में जो है पैदल जाने में कितना मुश्किल था, और दो बार जो है उन्होंने गिर गया। तो शिल प्रभुपाद मालूम हो गया जो मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं, तो शिल प्रभुपाद ने कहा अगर मैं इस समय अपने शरीर को त्याग करूँगा तो मेरे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ करवाया और मेरा इतना अच्छा शिष्य लोग हैं जो मेरा आज्ञा पालन करते रहते हैं। केवल एक मेरे पास इच्छा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू फिनिश दिस श्रीमद भागवतम। मैं श्रीमद भागवत को अनुवाद अपने टीका लिखने में जो है समाप्त करना चाहता हूँ। तो आप सोच लीजिए श्रील प्रभुपाद की किताब कितना महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद पूरा जीवन लगा दिया, ये शिल प्रभुपाद जी का महाप्रसाद है। क्योंकि महाप्रसाद हमेशा, तो महाप्रसाद जैसा गुरु जी कुछ प्रसाद पा लिया और कुछ जूता रखा हुआ, हम लोग सोचते हैं ये महाप्रसाद है, लेकिन जीव की और दूसरा काम है वाणी। जो शिल प्रभुपाद जी का किताब, ये शिल प्रभुपाद जी का महा महाप्रसाद है। इसलिए महा महाप्रसाद शिल प्रभुपाद जी का हम लोग रोज 24 घंटा ले सकते हैं। कभी कभी कोई गुरुजी यहाँ आ जाता है, अपना गुरुजी आ जाता है, तो अगर थोड़ा सा महाप्रसाद मिल गया, अरे कितना खुशी है कितना खुशी है। एक बार शिल प्रभुपाद भी अपने शिष्य को महाप्रसाद दिया है, गुलाब जामुन। तो वो गुलाब जामुन जो है उन्होंने तुक गया थोड़ा सा, आधा जो है आधा उनको दिया है। तो वो शिष्य जो है रूम से निकल गया, अरे क्या महाप्रसाद, अरे महाप्रसाद, क्योंकि बहुत बहुत खुशी था। तो सब लोग रूम से निकल गया, सब लोग पूछने लगा ये क्या है, अरे ये तो शिल प्रभुपाद दिया, उसको दिया है ये महाप्रसाद। तो एक शिष्य जो है उसको जबरदस्त तुरंत खा लिया उनको बहुत अच्छा लगा, क्या माल चोरी कर दिया जब शिल प्रभु जी को मालूम हो गया तो हमें हंसना लगा, अरे तुम बेवकूफ है महाप्रसाद तुरंत लेना चाहिए। तो फिर शिल प्रभु जी के अपना दया से उनको फिर गुलाब जामुन दिया, तुम तुरंत खाओ लेकिन हम लोग के पास वास्तव में जो है शिल प्रभु जी का महाप्रसाद हमेशा है, उनके किताब के पुस्तक के रूप में। जब हम लोग किताब पढ़ेंगे तो हमको शुद्ध 24 घंटा अखंड महाप्रसाद मिलेगा। हरे कृष्णा। इसीलिए हमारा अनुरोध है, अगर समय हो गया तो प्रभुपाद जी का किताब पढ़े। आजकल भी अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं सारे किताब, हिंदी में भी, भगवद्गीता हिंदी में है मेरे पास है। तो उसमें जब आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, और दिल्ली का एक विशेष कृपा है, हमारे में क्या है, ट्रैफिक जाम। हाँ कभी लोग सोचते हैं अरे बहुत गुस्सा करते हैं, मैं कई बार देखा ट्रैफिक जाम में फंस गया और बहुत गुस्सा कर रहे हैं, ए उसको फोन बजाता है जाओ 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 लेकिन भक्त लोग जो शांत है, समय मिल गया किताब निकालो अपना स्मार्टफोन से और पढ़ो इसलिए भक्त जो कृष्ण कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव असन्त मुक्ति मुक्ति सिद्धिकामे सकले असन्त सकले असन्त सब लोग अशांत हैं केवल कृष्ण का भक्त शांत है क्यों क्योंकि उनके पूरा भगवान की वाणी में श्रीला प्रभुपाद जी की वाणी में पूरा फोकस है जब भी समय मिल गया श्रीला प्रभुपाद जी का वाणी निकले और प्रभु जी का वाणी सुनी और पढ़ी इतना मेरा जो है आज के क्लास में जो है मेरा टॉपिक्स था और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतना ध्यान से सुन लिया और अगर कोई सेवा होंगे तो मुझे बताइए बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रश्न है क्या अच्छा मैं तो दास हूँ राम लक्ष्मण दास हूँ हरे कृष्ण ठीक है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की शिष्य राधा रमन भगवान की शिष्य कृष्ण बलराम भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रम्मया की इताय गौर प्रेम नंदी।